قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گزشتہ دو ہفتوں میں ہم نے ایمان کی آلودگی کے بارے میں سیکھا، کیسے ایمان آلودہ ہوتا ہے، اور پھر وہ آلودہ ایمان، وہ خراب اور نقصان دہ، ناقص، کرپٹ، پولیوٹڈ، کنٹامینیٹڈ فیتھ کس طرح سے ہم پہ اثر کرتا ہے، ہمیں موت تک لے جاتا ہے، ابدی ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ میرا ایمان خراب ہو گیا ہے یا کوئی ایسی چیز اس میں شامل ہو گئی ہے، تو پھر اسے درست کرنا، ٹھیک کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے بندوں کو کہ میرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، خرابی ہے اس میں، لیکن درست کرنے میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ سو آج بات کریں گے ایمان کی درستی میں حائل رکاوٹوں پر، obstacles to the soundness of faith۔ یاد رہے کہ خالص ایمان بائبل مقدس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایمان کا کوئی حصہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہے، تو وہ خالص نہیں ہے، تو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن درست کرنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کرنا چاہتے ہیں درست لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ کلام مقدس کی درست تعلیم اور تفہیم کا فقدان، یعنی lack of sound teachings and understanding of the holy scriptures۔ بائبل مقدس کی درست تعلیم ملی نہیں یا سمجھے نہیں ہم سے، یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے تعلیم پائی نہیں یا اسے سمجھا نہیں، یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ صحیح تعلیم پاؤ، یا کہیں سے مل رہی تھی تعلیم آپ نے توجہ نہیں کی، دل نہیں مانا تعلیم لینے کو، بات سمجھنے کو جی نہیں چاہا، یا تو کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، یا پھر آپ نے خود نہ تعلیم لینے کی کوشش کی نہ سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے رکاوٹ آ گئی کہ ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ بائبل میں کئی مثالیں ہیں، کئی جگہوں پر ایسا درج ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے ذریعے لوگوں کو سکھانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں یہ تعلیم نہیں چاہیے، ہم تیری بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور خدا کو کہنا پڑا، جیسے حزقیل سے اس نے کہا کہ یہ میری باتیں، میری تعلیم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس جہان کے خدا نے، یعنی ابلیس نے، جس کا اختیار اس دنیا پر ہے، اس نے انسانوں کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے کہ وہ تعلیم نہ حاصل کریں اور نہ اس پر غور کریں۔ ابلیس رکاوٹ ڈال کے بیٹھا ہے کہ آپ نہ تعلیم پاؤ اور نہ سمجھو۔ انسانوں کی بھی اس میں کمزوری ہے، خالی ابلیس پہ ہم نہیں ڈال سکتے کہ اس نے میرا ذہن بند کیا ہوا ہے، ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سیکھنے کو جائیں۔ دنیا میں بتھیرے ایسے لوگ ہیں جن تک کبھی کوئی پہنچا نہیں صحیح تعلیم لے کر، اور رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ایمان لائیں گے جب تک وہ سنیں گے نہیں، اور سنیں گے کیسے جب تک کوئی ان کے پاس جائے گا نہیں۔ سو صحیح تعلیم اور اس کو سمجھنے میں کمی، یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے ایمان درست کرنے میں۔ دوسری رکاوٹ ہے غلط یا جھوٹے استادوں اور عقیدوں پر اندھا یقین۔ ہم انسانوں کی بات زیادہ مانتے ہیں، ہم اندھا یقین رکھتے ہیں انسانوں پر، ٹی وی سے سن لیا کچھ اس کے پیچھے چل پڑے، کہیں سے کسی کی گواہی سن لی بڑے کرنی والے نے، بڑی دعا کرتے ہیں وہ تو پھونک مارتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، وہ تو دعا کرتے ہیں آپ کے کپڑوں کا رنگ آپ کو بتا دیتے ہیں کون سا پہنا ہوا ہے آپ نے، گھر میں اس وقت دیکھ جی میں کیا پک رہا ہے یہ بھی وہ بتا دیں گے، کس گھر میں کس جگہ بیٹھ کے کس بندے سے کیا بات کی، اس کا نام کیا، اس کی شکل کیسی، اس کا قد کاٹ کیسا، لوگ ان کے پیچھے چلتے۔ اندھا یقین، हम जी बचपन से करते आ रहे हैं और यही हमारे चर्च की रिवायत है, यही हमारे पासबान की रिवायत है, यही तालीम हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, हम उनकी बातों पर कामिल यकीन रखते हैं, अंधा यकीन करते हैं हम। किसी को कोई बात समझा दो, मिसाल के तौर पे ये फल बांटने से हमारे मुर्दे खाते पीते नहीं हैं, कपड़े बांट लेने से मेरे खुदावंद में सोए हुए बाप के बदन और हड्डियों पर कपड़े नहीं पहने जाएंगे, जिस कफन में जिस लिबास में उन्हें दफनाया गया वो चंद हफ्तों और दिनों में खत्म हो जाता है, जिस बॉक्स में दफनाया गया उसे कीड़े खा जाते हैं, वो जिल्द गोश्त पट्ठे और नसें खत्म हो जाते हैं, तहलील हो जाते हैं मिट्टी में, हड्डियां बाकी बच जाती हैं, उसके नाम पे कपड़े बांटने से मेरे मरे हुए बाप की हड्डियों पर कपड़े नहीं आ जाएंगे। अगर कोई कहे ना कि ये फजूल है तो कहते हैं जी ना, हमारे बुजुर्गों ने भी अपने बुजुर्गों के लिए कपड़े बांटे थे और खाने बांटे थे तो उन तक पहुंचते हैं, अंधा यकीन। हमने मिर्चें वारनी हैं, अपने बच्चों से नजर लगी हुई है इन्हें, मिर्चें वार के क्या कर लोगे, माचिस की दिया सलाई स्टिक्स लेके उसकी तीलियां लेके उनको आग लगा देना और वार देना बच्चों पे, क्या हो जाएगा इससे, अंधा यकीन। मेरी मां ने कहा था मिर्चें वार देना बच्चे से, दिया सलाई जला के वार देना, और फिर हम ईमान दुरुस्त नहीं करते, उसी पे चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा झूठे उस्तादों और झूठे अकीदों पर अंधा यकीन है, अकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तीसरी रुकावट है गलत रवायात पर कायम रहने की जिद या हट धर्मी, ना जी ना, हो नहीं सकता, हमारी रस्म है ये, हमारे बुजुर्गों की रस्म है ये, हमारी कलीसिया की रस्म है ये, हमारे अबाओ अजदाद की रस्म है ये, हम नहीं इसे तोड़ेंगे, हम नहीं इसको खराब करेंगे। लोग जिद पकड़ लेते हैं, नहीं माननी बात, नहीं सुननी बात, दुरुस्त नहीं होना। जबूर 95 में खुदा फरमाता है कि इन्होंने अपना दिल पत्थर कर लिया था, मेरी आवाज सुनना न चाही, जो तालीम दी उसे मानना न चाहा, अपने दिल की मर्जी पर चले, मैंने भी इन्हें छोड़ दिया फिर ताके हलाक हों। जिद में पड़ जाते हैं हम, ना जीना हो नहीं सकता, ये तो 2000 साल से 5000 साल से हमारे बुजुर्गों की रिवायत चली आ रही है, हम नहीं इसे छोड़ सकते। खुदा के लिए बाइबल मुकद्दस की तालीम पर आ जाइए, ये खाम नाकिस गलत रिवायतों पर पाबंद ना रहें, छोड़ दें इन्हें, ये बड़ी रुकावट है जी, हमारी बड़ी पुरानी ये रस्म है, और जिद पकड़ लेते हैं जी, नहीं हो सकता ये। खुदा के लिए इस बात पे तवज्जो करें, ये मेरी और आपकी जिद और अना है जो हमें ईमान दुरुस्त करने से रोक लेती है। और फिर शर्मिंदगी, रुसवाई और नतीजे का खौफ, क्या होगा, अरे मैंने जिंदगी अपनी दुरुस्त कर ली तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तू क्या बन गया है, रिलीजियस, मजहबी, दीन वाला, खुदा के रास्ते पे चल पड़ा, लोग क्या कहेंगे, मेरी बड़ी रुसवाई हो जाएगी अगर मैं ये गलत रस्म छोड़ दूंगा, अगर हमने 10वां, 7वां, 3रा, 40वां ना किया, अगर हमने फल ना बांटे, अगर कपड़े ना बांटे, अगर देगे ना चढ़ाई, अगर हमने दिए ना जलाए, अगर हमने सिरियां ना दी, अगर हमने बखूर ना जलाए, अगर हमने लोगों को अपने घर बुला के ये नजर नियाज ना की, तो हमारी तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी। लोग कहेंगे सारी उम्र बाप की खाते रहे और उसके मरने के बाद एक 40वां नहीं कर सके, हम रुसवाई से डरते हैं, रस्में नहीं तोड़ते, अकीदा दुरुस्त नहीं करते, हम डरते हैं कि हमें चर्च से निकाल दिया जाएगा, कि अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो, अगर मैं सवाल उठाऊंगा कि ये रस्म, ये अकीदा, ये तर्ज इबादत, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो मुझे चर्च कमेटी चर्च से निकाल देगी कि तू हमारे साथ मुत्तफिक नहीं, तो निकल जा। यसु मसीह ने जब दुरुस्त करने की कोशिश की फकीहों और फरीसियों को, शरा के आलिमों को, यहूदियों को, वो यसु की बातों का जवाब तो नहीं दे पाते थे, मान लेते थे तू सच कहता है, तो वो कहता मेरे पीछे हो लो, कहते तू बातें सच करता है लेकिन हम तेरे पीछे चल नहीं सकते, क्योंकि हमें खतरा है हमें इबादत खानों से निकाल दिया जाएगा, हमारी कुर्सियां हमसे छीन ली जाएंगी, हमारे हकूक जो हमें कौम में हासिल हैं वो हमसे छीन लिए जाएंगे। अगर मैंने ईमान दुरुस्त कर लिया, अगर मैंने अकीदा दुरुस्त कर लिया और उसकी बुनियाद पर मैंने अमल दुरुस्त कर लिया तो मैं शर्मिंदा होऊंगा, लोग कहेंगे छोड़ बाप दादा का ईमान छोड़ के कहीं और चला गया, तेरे बाप दादा सारी जिंदगी बेईमान ही रहे थे, लोग क्या कहेंगे, ये खौफ मुझे मेरे दोस्त शर्मिंदा करेंगे, ये खौफ मेरे पुराने साथी मुझे शर्मिंदा करेंगे, ये खौफ मेरी पोजीशन चली जाएगी, मेरा हक चला जाएगा, मैं अगर एनईसी छोड़ दूंगा तो एनईसी वाले कभी मेरी मदद नहीं करेंगे, कभी कोई लेटर नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए इख्तलाफ नहीं करना। मैं किसी दूसरी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपने नेशनल इवेंजेलिकल चर्च की बात कर रहा हूं ताकि किसी को ठेस ना लगे, समझने वाला समझ ले कि इन बिटवीन बैनुल सतूर क्या कहा जा रहा है। हम किसी गलत अकीदे वाली कलीसिया गिरोह या जमात को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें उससे फायदे मिल रहे होते हैं, और हमें यह पता होता है कि फिर हो सकता है मेरे बच्चे स्कूल में ना पढ़े, हमारा इलाज वहां से ना हो, हमें जो राशन मिल रहा है, जो इमदाद मिल रही है वो ना मिले, इसलिए हम गलत अकीदे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। खौफ होता है शर्मिंदगी का, रुसवाई का और कॉन्सिक्वेंसेस या नतीजे या रिजल्ट का कि इसका क्या अंजाम होगा, उसका खौफ होता है, इसलिए हम अकीदा दुरुस्त नहीं करते। और पांचवी बात, हम दुरुस्त ईमान के हामिल लोगों से दूर रहते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते कि हम किसी अच्छे ईमान को समझने वाले शख्स के करीब जाए, दूर रहते हैं। वजह कोई भी हो सकती है, आपकी अपनी सोच, आपके अंदर की जिद, हठधर्मी, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते उनके करीब रहने की, दूर रहते हैं, इसलिए आपका ईमान दुरुस्त नहीं होता। ये मुझे एक बड़ी बुरी कह ले अच्छी कह ले, ये आप पे मुनहसर है, आप पे डिपेंड है, ये आदत है मेरी, बतौर पासवान रूहानी उस्ताद मैं खानदानों में जब कोई खुशी या गमी का वक्त होता है तो मैं उन्हें मशवरा जरूर देता हूं, ऐसा मशवरा अपनी जिम्मेदारी समझता हूं जिसमें उनका नुकसान ना हो, मुनासिब तरीके से सारे काम भी हो जाएं, इज्जत भी रहे और कोई ऐसा अमल ना हो कि जो ईमान के खिलाफ हो। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उनकी अपनी मर्जी है। कई लोगों को फिर मैं बुरा लगता हूं इस बात में कि पादरी साहब हमें मना करते हैं कि ऐसे काम ना करो, इसलिए हमने उनको बुलाना नहीं है, हमने उन्हें अपने काम के लिए नहीं बुलाना क्योंकि वो इस बात से मना करेंगे, दुरुस्त नहीं होना इसलिए दूरी कर लेते हैं, दुरुस्त नहीं होना इसलिए फासले कायम कर लेते हैं, दुरुस्त नहीं होना इसलिए कलीसिया में आना नहीं, इबादत में आना नहीं, कलाम सुनना नहीं, दुरुस्ती लेनी नहीं है। तो ये रुकावटें हैं जो हमारा ईमान दुरुस्त होने नहीं देती। हम अपने अकीदे, अपने ईमान, अपना अमल, अपने रवैये गलत कर बैठे हैं। वजह, लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाएगी, रुसवाई होगी, हमें निकाल दिया जाएगा, बड़ी पुरानी रस्में हैं कैसे छोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके दिल में यह भी होगा, क्या जरूरत है इस मामले में खुदा के कलाम की सलाह लेने की, हमारी मर्जी है हम जैसे मर्जी मनाएं अपनी खुशियां, हमारी मर्जी है हम जैसे मर्जी अपने गम की हालतें मनाएं, लेकिन आज खुदा का कलाम आप सब पर नाफिज होता है, लागू हो गया है, आपने सुन लिया है। जितने यहां मौजूद हैं वो भी, और जो इस कैमरे के जरिए से देख और सुन रहे हैं, उन पर भी आज खुदा का कलाम नाफिज हो गया है कि अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, अपना ईमान दुरुस्त कर लो, अपनी रस्में रवाज दुरुस्त कर लो, नहीं तो जो असर होगा इसका वो हलाकत है। खुदा ने कहा इन्होंने मेरी सुनना ना चाहा, अपने दिल सख्त कर लिए, इसलिए मैं भी इन्हें छोड़ देता हूं ताकि हलाक हूं। खुदा को मौका दे, वो आपका ईमान दुरुस्त कर दे। ईमान दुरुस्त होगा तो हमारे रवैये भी दुरुस्त होंगे, एक दूसरे के साथ भी और खुदा के साथ भी हमारा ताल्लुक खूबसूरत शानदार और खुदा के यहां काबिल कबूल हो जाएगा।